नमस्कार सुतो, छिंदवाड़ा ओवलाइन से आपका दोस्त योगेश। जिस तरीके से बीते दिनों बजट पेश हुआ है और बजट को लेकर आम नागरिकों में क्या राय है इस बजट को लेकर, इसी से हम जानेंगे आम नागरिकों से। आज हमारे साथ में सौसर से संदीप जी भकने जुड़े हुए। संदीप जी, मोबाइल आने पर स्वागत है सर आपका।
नमस्कार जी।
सर, ये बजट अभी पेश हुआ है, इसको कैसे देख रहे सर?
बजट में आम आदमी का, ग्रहणियों का कहीं भी ध्यान नहीं रखा गया है
जी।
सारा जोर सार्वजनिक उपक्रम को निजीकरण करने पे जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यदि निजीकरण करने से सरकार की इनकम बढ़ेगी, पर इसके पूर्व के भी अनुभव सरकार को है। इसके पूर्व में भी जहाँ जहाँ भी निजीकरण हुआ है, केवल उद्योगपतियों का और बड़े लोगों का भला हुआ है, उसमें आम व्यक्ति का भला नहीं हुआ है। किसान बिल में भी सरकार ने किसान की आय को दोगुना करने का बजट में किया है, पर उसमें ऐसे कोई उपाय नहीं बताया है कि इनका क्या MSP जारी रहेगी, इनको कैसे फसल का अच्छा दाम मिलेगा, मार्केटिंग की क्या व्यवस्था है। जहां एक ओर सरकार मंडी खत्म कर रही है, MSP खत्म कर रही है, फिर किसानों की आय वो दुगनी कैसे करेंगे। पेट्रोल का आपने भाव देखा, 100 रुपए के पार हो गया। रसोई गैस में सब्सिडी खत्म कर दी, रसोई गैस के रेट आज बढ़े हुए हैं। तो जो आम व्यक्ति है, जो साधारण गरीब व्यक्ति है, मध्यम वर्गीय है, उसका कहीं भी बजट में ध्यान नहीं रखा गया है
जी। जी सर, जिस तरीके से नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है और उसमें सर 6,000 करोड़ रुपए की शिक्षा नीति में कटौती की गई है, तो इससे आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
जो गांव का जो गरीब व्यक्ति है, गांव में जो शिक्षा होनी चाहिए, आज शहरों में तो सेंट्रल स्कूल और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है, उसमें बड़े व्यक्ति बड़े आदमी का परिवार पढ़ लेता है, पर जो गांव की शिक्षा नीति है उसमें कोई सुधार के विशेष उसमें नहीं दिख रहा है। आज जो आधुनिक शिक्षा गांव में होनी चाहिए
जी,
उसका कहीं प्रावधान गांव में नहीं है, केवल प्राइवेट और बड़े स्कूलों को प्रावधान दिया गया है। और जो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है और रक्षा का है, इसके लिए तो प्रथम प्रायोरिटी सरकार की होनी चाहिए, पर स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके और सुरक्षा को लेके ऐसे कोई बजट में आम व्यक्ति को लेके ध्यान में न रखते हुए, केवल बड़े लोगों का ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार का बजट बनाया है। चाहे BSNL हो, रेलवे हो, लाल किला हो, हर सार्वजनिक स्थिति को उद्योगपतियों को देने का और निजीकरण करने का फैसला, और निजीकरण करने से बजट पैसा आएगा ऐसा सरकार का कहना है, पर आम व्यक्ति उसमें कहाँ है, छोटा गरीब वर्ग कहाँ है, इसका कोई ध्यान नहीं रखा गया
जी। जी जी। सर, जिस तरीके से बाजार का समृद्धिकरण व समर्थन मूल्य पर क्या सरकार अपने हाथ पीछे हटाना चाहती है?
हाँ, ये जो किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली में, वो इसी का परिणाम है। वो वहाँ के किसान समझ गए हैं कि सरकार अपना MSP से पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है, और पूरा उद्योगपति और किसानों के बीच में सरकार उससे बचना चाहती है। सरकार मिनिमम प्राइस किसानों को नहीं देना चाहती है, और अपनी बला
जी
वो टाल के कि किसान और उद्योगपति आपस में समझौता कर ले, और वो आपस में ही समझते रहे उनको क्या रेट मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। सरकार उसमें अपनी जिम्मेदारी से दूर हो रही है। इसी का विरोध दिल्ली में किसान कर रहे हैं कि MSP यदि रहेगी तो सरकार को आम किसान यदि प्राइवेट उद्योगपति उसका रेट नहीं दे पाएगा, तो MSP पे मंडी में बेचते थे पहले किसान
जी।
पर यदि MSP खत्म कर देगी सरकार, MSP का कानून नहीं बनाएगी, तो किसान कहाँ जाएगा, उसको मजबूरन उद्योगपतियों को बेचना पड़ेगा
जी। सर, जिस तरीके से इस बजट में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, इससे आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
आम व्यक्ति परेशान है। एक ओर तो रेट हर चीज के, हर वस्तु के बाजार में भाव बढ़े हुए है, और दूसरी ओर ना तो रोजगार के कोई साधन, ना तो कोई रोजगार देने की कोई व्यवस्था है, ना उद्योग धंधे को, ना कुटीर उद्योग को, ना कृषि में आधारित उद्योग कैसे बढ़े, इस ओर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जब तक गांव का व्यक्ति को काम नहीं मिलेगा, जिस तरह से इसके पहले भी UPA की सरकार केंद्र में थी, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने गांव के गरीब जो व्यक्ति है उसको नियमित साल में कम से कम 90 दिन का रोजगार मिले, इसके लिए रोजगार गारंटी कानून लाया था। हर व्यक्ति को खाद्यान्न मिले, इसलिए खाद्यान्न कानून बनाया था सोनिया गांधी जी के कहने से, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। पर इस बजट में गरीबी रेखा के कार्ड खत्म किए जा रहे हैं, राशन देने का काम खत्म किया जा रहा है, गांव के जो किसान जो मजदूर अभी पलायन है, जो लॉकडाउन में पलायन होकर गांव आए, उनके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बजट में आम व्यक्ति जो है, छोटा व्यक्ति जो है, गांव का मजदूर जो है, उसके प्रति ऐसी कोई योजना सरकार ने नहीं बनाई है ताकि उसको गांव में रोजगार मिले, कुटीर उद्योग को, गृह उद्योग को बढ़ावा मिले। ऐसा कोई, यदि कुटीर उद्योग और गृह उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो गांव का जो किसान है, गांव का जो मजदूर है, उसको रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, पर एक और जहाँ आय तो कहीं बढ़ नहीं रही है, ऊपर से महंगाई बढ़ रही है, रसोई गैस बढ़ गई है, पेट्रोल बढ़ गया है,
जी
हर चीज का रेट बढ़ रहा है, और इनकम की कोई व्यवस्था सरकार ने की नहीं।
सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आज का किसान क्या अपने आने वाले पीढ़ी को इस क्षेत्र में डालना चाहेगा?
किसान क्या बच्चे की ये परेशानी है कि यदि शादी करना चाहे तो किसान के बच्चे को कोई लड़की देता नहीं, ये गांव की स्थिति आज है। किसानी में इतना आदमी परेशान है, सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि एक किसानी ऐसा है जो पूरे विश्व को पालता है, पर उसके फसल के दाम कैसे मिले, उसकी सुरक्षा कैसी हो, ना तो उसको बीमा कंपनी क्लेम देती है, ना सरकार उसको अच्छे भाव देती है उसके उत्पादन को, ना ही सरकार ने पूरे भारत की 70% अर्थव्यवस्था किसानी पे आधारित है, पर सरकार उनके बाजार की व्यवस्था नहीं करती, उनको रेट कैसे मिले, उनके फसलों की सुरक्षा कैसी हो, ऐसी कोई ठोस नीति सरकार, ना तो प्रदेश सरकार ना केंद्र सरकार इस देश में करती है। सरकारें किसानों के नाम पे आती है, जब चुनाव होता है तो किसानों के लिए प्रलोभन दिए जाते हैं, कर्जा माफ कर देंगे, आपकी इनकम दुगनी कर देंगे, पर जब सरकारें बन जाती है तो किसानों को अलग कर दिया जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है, और उद्योगपतियों के फेवर की नीति बनाई जाती है।
जी जी जी, तो ये थे संदीप जी भकने, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर बजट को लेकर अपनी राय दी। छिंदवाड़ा वालन से आपका दोस्त योगेश गौतम।